नमस्ते, मैं आराव हूँ। 9 Knot Tree के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। क्रिस रिचर्डसन की पुस्तक माइक्रोसर्विसेज पैटर्न्स विद एग्जांपल्स इन जावा एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पर एक व्यावहारिक तकनीकी मार्गदर्शिका है। यह माइक्रोसर्विसेज को हर समस्या का स्वचालित समाधान मानकर प्रस्तुत नहीं करती, बल्कि उसकी उपयोगिता, जटिलताओं और लागतों का संतुलित मूल्यांकन करती है। पुस्तक का मुख्य उद्देश्य उन डेवलपर्स और आर्किटेक्ट्स को ठोस निर्णय ढांचा देना है जो बड़े मोनोलिथ को बदलने या शुरू से वितरित एप्लीकेशन बनाने पर विचार कर रहे हैं। रिचर्डसन पैटर्न आधारित ढंग से सेवा विभाजन, सेवाओं के बीच संचार, डेटा स्वामित्व, लेन देन, क्वेरी, परीक्षण और डिप्लॉयमेंट की समस्याएं समझाते हैं। जावा उदाहरणों के माध्यम से विचारों को कार्यान्वयन के निकट लाया गया है। हालांकि पैटर्नों का वास्तु सिर्फ मूल्य किसी एक भाषा तक सीमित नहीं है। पुस्तक की विशेषता यह है कि यह वितरित प्रणालियों की अनिवार्य विफलताओं, डेटा असंगति और परिचालन कठिनाइयों को डिजाइन के केंद्रीय विषय मानती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, माइक्रोसर्विसेज अपनाने से पहले मोनोलिथ की सीमाओं और नई जटिलताओं का मूल्यांकन। पुस्तक का आरंभिक और महत्वपूर्ण योगदान यह स्पष्ट करना है कि माइक्रोसर्विसेज मोनोलिथ का केवल आधुनिक विकल्प नहीं है। मोनोलिथ में एक ही प्रक्रिया और अक्सर एक साझा डेटाबेस के भीतर सुविधाओं का निर्माण, परीक्षण और डिप्लॉयमेंट अपेक्षाकृत सरल हो सकता है। इसलिए छोटे उत्पाद, स्थिर डोमेन या सीमित टीम के लिए मोनोलिथ उचित चयन रह सकता है। समस्या तब उभरती है जब कोडबेस, टीमों और रिलीज चक्रों की परस्पर निर्भरता इतनी बढ़ जाए कि किसी हिस्से में बदलाव पूरे एप्लीकेशन की गति और जोखिम को प्रभावित करे। माइक्रोसर्विसेज स्वतंत्र डिप्लॉयमेंट, अलग स्केलिंग और टीम स्वायत्तता दे सकती हैं, पर बदले में नेटवर्क विलंब, आंशिक विफलता, अधिक निगरानी और परिचालन बोझ लाती है। रिचर्डसन का दृष्टिकोण इस व्यापारिक संतुलन को वास्तुशुद्ध निर्णय का आधार बनाता है। पुस्तक यह भी संकेत देती है कि प्रबंधनीयता खो चुके मोनोलिथ पर लगातार अस्थायी सुधार जोड़ना समाधान नहीं है। पहले यह पहचानना जरूरी है कि कठिनाई वास्तव में संगठनात्मक सीमाओं, डोमेन की अस्पष्टता, रिलीज प्रक्रिया या डेटा निर्भरता में कहां है। इस तरह पाठक माइक्रोसर्विसेज को फैशन के बजाय विशिष्ट समस्याओं के लिए चुनी जाने वाली संरचना के रूप में देखते हैं। दूसरा, डोमेन आधारित सेवा विभाजन और स्पष्ट डेटा स्वामित्व की आवश्यकता। सेवा विभाजन पुस्तक का मूल डिजाइन प्रश्न है, क्योंकि गलत सीमाओं वाली माइक्रोसर्विसेज जल्दी ही वितरित मोनोलिथ बन सकती है। रिचर्डसन सेवाओं को केवल तकनीकी परतों, जैसे यूजर इंटरफेस या डेटाबेस एक्सेस के आधार पर अलग करने के बजाय व्यावसायिक क्षमताओं और डोमेन सीमाओं के आधार पर बांटने पर जोर देते हैं। डोमेन ड्रिवन डिजाइन के विचार यहां उपयोगी होते हैं, विशेषकर बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट और स्पष्ट जिम्मेदारियों के रूप में। किसी सेवा को अपने नियमों, अपने डेटा और अपने बदलावों के लिए यथासंभव उत्तरदायी होना चाहिए। यदि अनेक सेवाएं एक ही डेटाबेस तालिकाओं को सीधे बदलती हैं, तो स्वतंत्रता केवल नाम की रह जाती है और स्कीमा परिवर्तन फिर से समन्वय मांगने लगते हैं। अलग डेटा स्वामित्व का अर्थ यह नहीं कि हर सेवा हर जानकारी की तात्कालिक प्रति रखे, बल्कि यह कि डेटा का आधिकारिक स्रोत स्पष्ट हो। अन्य सेवाएं API, घटनाओं या प्रतिकृत रीड मॉडल के माध्यम से आवश्यक जानकारी प्राप्त करें। यह व्यवस्था स्थानीय निर्णय क्षमता बढ़ाती है, लेकिन डेटा की प्रतियों और अस्थायी असंगति को स्वीकार करना पड़ता है। पुस्तक इसीलिए सेवा सीमा को स्थिर तकनीकी रेखा नहीं, बल्कि व्यावसायिक नियमों, डेटा प्रवाह और टीम जिम्मेदारी के सावधानीपूर्ण विश्लेषण का परिणाम मानती है। तीसरा, असिंक्रोनस संदेश और डेटा समन्वय से विश्वसनीय अंतर सेवा सहयोग। माइक्रोसर्विसेज में सेवाओं के बीच संचार केवल अनुरोध भेजने की समस्या नहीं है। नेटवर्क अविश्वसनीय हो सकता है, एक सेवा अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं हो सकती, और एक ही व्यावसायिक कार्रवाई कई स्वतंत्र डेटा भंडारों को प्रभावित कर सकती है। पुस्तक असिंक्रोनस संदेश, घटनाओं और डेटा प्रतिकृति को इस वास्तविकता से निपटने की आधारभूत तकनीकें मानती है। जब कोई सेवा महत्वपूर्ण स्थिति परिवर्तन प्रकाशित करती है, दूसरी सेवाएं उस घटना के आधार पर अपना स्थानीय डेटा या प्रक्रिया अद्यतन कर सकती है। इससे हल पड़ने या निर्णय के लिए स्रोत सेवा को तत्काल बुलाने की निर्भरता घटती है, लेकिन यह मॉडल नई जिम्मेदारियां भी देता है। संदेश दो बार आ सकते हैं, क्रम बदल सकता है या उपभोक्ता कुछ समय के लिए पीछे रह सकता है, इसलिए उपभोक्ताओं को दोहराव सहने योग्य बनाना, विफल संदेशों को संभालना और स्थिति के अंततः संगत होने को समझना जरूरी है। पुस्तक संदेश आधारित संवाद को केवल प्रदर्शन सुधार के रूप में नहीं, बल्कि सेवा स्वायत्तता और विफलता सहनशीलता की शर्त के रूप में रखती है। साथ ही यह चेतावनी निहित है कि जहां तत्काल उत्तर और सख्त समन्वय आवश्यक हो, वहां समकालिक संचार पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता। सही चयन उपयोगकर्ता अपेक्षा, व्यापार नियम और विफलता के प्रभाव पर निर्भर करता है। चौथा, वितरित लेनदेन। सागा और क्वेरी पैटर्नों के माध्यम से डेटा असंगति का प्रबंधन। एक मोनोलिथ में कई डेटाबेस बदलावों को एक ऐसी आईडी लेनदेन में बांधना परिचित तरीका है, पर स्वतंत्र सेवाओं और उनके अलग डेटा भंडारों में यह तरीका व्यावहारिक या वांछनीय नहीं रहता। पुस्तक इस चुनौती के लिए सागा जैसे पैटर्नों की चर्चा करती है। सागा में एक बड़ी व्यावसायिक प्रक्रिया स्थानीय लेनदेन की श्रृंखला में विभाजित होती है। हर चरण अपनी सेवा के भीतर परिवर्तन करता है और अगले चरण को आगे बढ़ाता है। यदि कोई चरण विफल हो तो पहले किए गए कार्यों के प्रभाव को उलटने या समायोजित करने वाले प्रतिपूरक कदम चलाए जाते हैं। यह पारंपरिक रोलबैक जैसा नहीं है, क्योंकि वास्तविक दुनिया के कार्य जैसे भुगतान स्वीकृति या आरक्षण हमेशा सरलता से मिटाई नहीं जा सकते। इसीलिए प्रतिपूरक क्रियाओं का डिजाइन व्यवसाय नियमों से जुड़ा होता है। पुस्तक क्वेरी की कठिनाई भी सामने रखती है। अलग सेवाओं के डेटा को जोड़कर स्क्रीन या रिपोर्ट बनानी हो तो हर अनुरोध पर अनेक सेवाएं बुलाना धीमा और नाजुक हो सकता है। इसके विकल्प में एपीआई संयोजन और घटनाओं से बने सामग्रीकृत दृश्य आते हैं। इनमें तात्कालिक सटीकता और तेज स्वतंत्र पठन के बीच स्पष्ट समझौता होता है। पुस्तक का मूल्य इस समझौते को छिपाने के बजाय डिजाइन चर्चा का केंद्र बनाना है। अंत में परीक्षण, प्रेक्षणीयता, डिप्लॉयमेंट और क्रमिक माइग्रेशन को आर्किटेक्चर का हिस्सा मानना पुस्तक माइक्रोसर्विसेज की सफलता को केवल सेवा कोड की गुणवत्ता से नहीं मापती। अनेक स्वतंत्र सेवाओं वाले सिस्टम में परीक्षण, डिप्लॉयमेंट और उत्पादन संचालन स्वयं वास्तुशिल्प विषय बन जाते हैं। यूनिट परीक्षण आवश्यक है, लेकिन वे सेवा अनुबंध, संदेश प्रवाह और वास्तविक एकीकरण की समस्याओं को पूरी तरह नहीं पकड़ते। इसलिए सेवा सीमाओं पर अनुबंध आधारित परीक्षण तथा चयनित एंड टू एंड परीक्षण उपयोगी होते हैं। उत्पादन में किसी अनुरोध का कई सेवाओं से गुजरना सामान्य है, अतः केंद्रीकृत लॉगिंग, मैट्रिक्स, स्वास्थ्य जांच और वितरित प्लेसिंग के बिना दोष का स्रोत ढूंढना कठिन हो जाता है। रिचर्डसन प्रेक्षणीयता को बाद में जोड़ा जाने वाला उपकरण नहीं, बल्कि डिजाइन और संचालन की आवश्यक क्षमता के रूप में स्थापित करते हैं। डिप्लॉयमेंट के लिए स्वचालन, अलग वातावरणों में दोहराने योग्य प्रक्रिया और सेवा निर्भरता की समझ जरूरी है। विशेष रूप से उपयोगी पक्ष मोनोलिथ से क्रमिक बदलाव पर ध्यान है। एक साथ पूरा पुनर्लेखन अत्यधिक जोखिमपूर्ण हो सकता है। पहले सीमित व्यावसायिक क्षमता को अलग करना, उसके आसपास स्पष्ट इंटरफेस बनाना और धीरे धीरे जिम्मेदारी स्थानांतरित करना अधिक नियंत्रित मार्ग है। यह दृष्टि तकनीकी परिवर्तन को टीम संरचना, रिलीज अनुशासन और दीर्घकालिक रखरखाव से जोड़ती है। निष्कर्ष में, माइक्रोसर्विसेज पैटर्न्स उन एंटरप्राइज डेवलपर्स, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट्स और तकनीकी नेतृत्वकर्ताओं के लिए सबसे उपयोगी है, जिन्हें वितरित सिस्टम की वास्तविक डिजाइन समस्याओं पर व्यवस्थित समझ चाहिए। जावा और स्प्रिंग से परिचित पाठक उदाहरणों से सीधे लाभ पाएंगे, पर सेवा सीमाएं, डेटा स्वामित्व, संदेश आधारित समन्वय और सागा जैसे सिद्धांत अन्य तकनीकी स्टैक पर भी लागू होते हैं। यह पुस्तक शुरुआती पाठक के लिए भी उपयोगी है, बशर्ते उसे वेब एप्लीकेशन, डेटाबेस और इंटरप्रोसेस संचार की बुनियादी जानकारी हो। अनुभवी पाठक इसे पैटर्नों के संदर्भ स्रोत और आर्किटेक्चर समीक्षा के ढांचे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका व्यावहारिक लाभ यह है कि पाठक केवल स्वतंत्र रूप से डिप्लॉय होने वाली सेवाओं की कल्पना नहीं करते, बल्कि विफल संदेश, डुप्लीकेट घटनाएं, अस्थायी डेटा असंगति, जटिल जांच और परिचालन लागत जैसे परिणामों को पहले से डिजाइन में शामिल करना सीखते हैं। समान विषय की कई पुस्तकों की तुलना में इसकी अलग पहचान व्यापक लेकिन संगठित पैटर्न कवरेज है। यह ना तो माइक्रोसर्विसेज के पक्ष में प्रचार है, न केवल जावा केंद्रित कोड संघ। रिचर्डसन निर्णयों के पीछे की समस्या, उपलब्ध पैटर्न और उनके व्यापारिक समझौतों को साथ रखते हैं। मोनोलिथ से नियंत्रित माइग्रेशन पर इसका ध्यान इसे विशेष रूप से प्रासंगिक बनाता है, क्योंकि अधिकांश संस्थाएं शून्य से नया सिस्टम बनाने के बजाय मौजूदा सिस्टम की सीमाओं के साथ काम कर रही होती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं क्रिस रिचर्डसन, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।